tasya vasulompatam kartaryu bharate tasmin anyonyam chajikam satam. Ladies, on seeing the dust storm, the saintly persons could understand that there were a great deal of irregularities due to the death of King Vena. Without government, the state was devoid of law and order. And consequently, there was a great uprising of murderous thieves and rogues who were plundering the riches of the people in general. Although the great sages could subdue the disturbance by their powers, just as they could kill the king, they considered it improper on their part to do so. Thus, they did not attempt to stop the disturbance. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The saintly persons and great sages killed King Vena out of emergency, but they did not choose to take part in the government in order to subdue the uprising of thieves and rogues, which took place after the death of King Vena. It is not the duty of Brahmins and saintly persons to kill, although they may sometimes do so in the case of an emergency. They could kill all the thieves and rogues by the prowess of their mantras, but they thought it the duty of Kshatriya kings to do so. Thus, they reluctantly did not take part in the killing business.
Hare Krishna.
It is pleasing to see the nice attendance you have during Srimad Bhagavatam class. We are reading the 14th chapter of the 4th canto of Srimad Bhagavatam, which is explaining the story of the life of King Vena.
हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय से पढ़ रहे हैं जिसमें राजा वेन की कथा का वर्णन आता है.
So many precious instructions to illuminate our consciousness are contained within this story.
इस कथा में बहुत सारे मूल्यवान शिक्षाएं प्रदान किए गए हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है.
Especially the principle that from apparent inauspicious circumstances is born the most auspicious opportunity for devotional service.
विशेष करके ये बात कि बहुत अमंगल स्थिति से भी बहुत ही मंगलकारी भक्ति का सुअवसर जो है प्रकट होता है.
Because this world is a place where suffering is imminent, the Lord teaches us this lesson again and again.
क्योंकि ये दुनिया एक ऐसा स्थान है जहां पर दुख होता ही है, भगवान हमें शिक्षा बार बार प्रदान करते हैं.
Practically every incarnation of the Supreme Personality of Godhead appeared as a result of major upheaval, crisis and misery within the world.
हम देखेंगे कि हर एक अवतार उस समय प्रकट होते हैं जब दुनिया में बहुत दुख और विपत्ति और भ्रम हो रहे होते हैं.
The devatas as well as the rishis, they were so much being tortured and harassed by Ravana that they prayed to Lord Vishnu, save us. And as a result, the Supreme Personality of Godhead appeared as Sri Ramachandra.
देवताओं और ऋषि जो हैं वो रावण के द्वारा बहुत उत्पीड़ित थे और उस समय भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रकट होने के लिए और उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं.
Similarly, the entire planet Earth was helplessly submerged at the bottom of the Garbhodak ocean. Then the great rishis and sages prayed to Lord Brahma, save the earth.
और उसी तरीके से जब पूरी धरती जो है वो गर्भोदर सागर में गिरी थी और सब देवता जो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हमें बचाओ.
As a result of this great crisis, Shri Varaha Dev appeared.
और इस विपत्ति के कारण जो है श्री वराहदेव प्रकट हुए.
Similarly, when the devatas and the asuras were churning the ocean of milk at the Mandara mountain, if the churning went on very smoothly, the most wonderful part of that pastime would have taken place.
ऐसे जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अगर वास्तव में मंथन ठीक से हो रहा होता तो फिर ये विशेष लीला जो है वो प्रकट नहीं होती.
There was an emergency. The entire mountain was sinking.
ये एक आपत्तिकाल स्थिति थी क्योंकि पूरा पर्वत जो है डूब रहा था.
They were helpless.
वे निसहाय थे.
They just cried out to Vishnu to help them.
वे भगवान विष्णु को पुकारने लगे मदद के लिए.
As a result, Kurma Avatar
appeared. फलतः कुर्म भगवान प्रकट हुए.
Similarly, Mother Earth, along with the demigods, approached Lord Brahma. Why? Because of the overburden of demoniac kings exploiting the resources of the planet.
उसी तरीके से जो है देवता जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं इसलिए क्योंकि जो असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो धरती का शोषण कर रहे होते हैं.
In fact, demons from various planets all over the universe made a conspiratorial plan of how to conquer the universe.
और अलग अलग लोगों से जो असुर हैं उन्होंने षड्यंत्र रचा कि कैसे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त की जाए.
They all decided to take birth on the Earth planet and make that their headquarters, and from this place to conquer everything.
उसने इसे कहा कि हम धरती पर जन्म लेंगे और उसको यहाँ पर अपना केंद्र बनाकर पूरे ब्रह्मांड को जीतेंगे.
There was Jarasandha, Homasura, Salya, there was Kamsa, Keshi, Aga. So many demons were just exploiting and trampling on the earth.
ये इतने सारे असुर भौमासुर कंस जरासंध शल्य ये सब मिलकर ये धरती का शोषण कर रहे थे.
And ultimately, poor Devaki and Vasudev were cast within the confines of the walls of a prison.
और वसुदेव और देवकी को जो है जेल के दीवारों में बंद किया गया है.
In response, the Supreme Lord, Shri Krishna,
appeared. Bhagavan Shri Krishna prakat hue.
So what do we learn from this lesson? That the problems we face in life are the greatest opportunities for self-realization.
इससे हम क्या सीखते हैं कि जो समस्याएं हम जीवन में देख रहे हैं वो आत्मसाक्षात्कार के सबसे बड़े अवसर हैं.
That is one of the reasons Kali Yuga is the best time for Krishna consciousness.
और ये एक कारण है कि जिससे कि कलयुग जो है कृष्ण भावना के लिए एक सबसे अच्छा समय माना जाता है.
Actually, in every age, the chanting of the holy name can reward one pure love of God.
वास्तव में हर युग में जो है कृष्ण नाम संकीर्तन से प्रेम मिल सकता है.
However, people have to go through all kinds of difficult tribulations to perform their spiritual practices in previous ages.
लेकिन दूसरे युगों में जो है व्यक्ति को तकलीफ उठानी पड़ती थी अपने अभ्यास आध्यात्मिक अभ्यास को करने के लिए.
Because chanting is just too simple.
और जो कीर्तन है वो बहुत ही सरल है.
Every other process of religion loses its potency in the age of Kali Yuga. Only Harinam Sankirtan gains its strength in this age.
हर एक जो दूसरे तरीके हैं कलयुग में उनकी शक्ति जो कम हो जाती है लेकिन हरिनाम की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है.
But the necessary qualification for achieving Krishna Prema through Harinam in this age of Kali is we have to attentively cry out the name like a child crying for its mother.
लेकिन ये आवश्यक है इस कलयुग में हरिनाम के द्वारा प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें बड़े ध्यानपूर्वक भगवान के लिए रोना है जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है.
If everything is very nice in our life, we don't cry out. We just chant ritualistically.
अगर हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहा तो हम भगवान के लिए रोएंगे नहीं सिर्फ रीति रिवाज के रूप में जप करेंगे.
However, because Kali Yuga is so full of sufferings, it's the best possible situation because it's so natural in that condition to just helplessly cry out for the mercy of the Lord by chanting His holy name.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
क्योंकि कलयुग में इतने दुख हैं, इतने तकलीफें हैं, तो इसके कारण स्वाभाविक है कि हम भगवान के नामों को इस तरीके से पुकारते हैं.
Success in life has nothing to do with making a comfortable, happy situation in this world.
इस जीवन में जो है सफलता का अर्थ ये नहीं है कि सुख सुविधा से यहाँ पर रहना.
Success in life is getting out of this world.
सफलता का अर्थ है दुनिया से बाहर निकलना.
Srila Prabhupada explained in prison house, there is first class, second class, third class, and fourth class cells within the prison.
श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जेल में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के अलग अलग कमरे होते हैं.
No doubt, elevating yourself from a fourth class dirty, filthy cell to a first class nice, clean cell is improvement.
इसमें कोई शक नहीं, चतुर्थ श्रेणी के कमरे से जेल में जो कि बहुत गंदा है, भद्दा है, वहां से निकलकर प्रथम श्रेणी के साफ जेल के कमरे में रहना थोड़ा सा सुधार है.
But that is not the goal of life.
लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है.
With the same amount of energy that you're using to bribe the different prison officials to get a elevation in your cell status, you can be contacting your lawyer and making a real solution to get out of the prison.
जितना पैसा आप जेल के लोगों को दे रहे हैं जिससे कि आप ज्यादा अच्छे कमरे में जेल में जा सके, उतने पैसे से आप जो है किसी वकील को लेकर जेल से बाहर निकल सकते हैं.
Similarly, people are very much eager to try to create a nicer situation in a world of suffering.
इस दुखमय संसार में लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि सुख की प्राप्ति हो सके.
A place where death will be the final blow to diffuse all of your dreams.
एक ऐसा स्थान है जहां पर कि आपके सारे स्वप्न जो है मृत्यु के द्वारा नष्ट हो जाएंगे.
But with the same energy, we're struggling and toiling to try to be happy in this world. We can be putting that same energy into Krishna consciousness and making a permanent solution to our problems.
ये उसी प्रयास से जो जितना हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, उससे हम कृष्ण भाव में लगातार हम अपनी समस्याओं का एक अंततः फल प्राप्त कर सकते हैं.
The heavenly planets are not as favorable as this earth planet for devotional service.
भक्ति के लिए स्वर्गलोक उतने अनुकूल नहीं है जितना कि ये धरती का लोक है.
Because everyone is pious and religious, but it's just too nice.
हर एक व्यक्ति सुकृति की होते हैं और धार्मिक होते हैं, लेकिन स्थिति इतनी अच्छी होती है.
So of course, it is natural that we do not seek miseries and calamities.
इधर तो भाव है कि हम जानबूझकर कोई दुख और विपत्तियां को नहीं बुलाते.
But they will come of their own accord.
लेकिन वो अपने आप ही आएंगे.
The nature of Maya is that which is not.
माया का जो है स्वभाव है कि जो कि नहीं है.
What you think you're going to get is just the opposite of what you actually get.
जो आप सोचते हैं आपको प्राप्त होगा उसका ठीक उल्टी ही चीज आपको प्राप्त होती है.
We have seen.
हमने देखा है.
No need to get into too many examples.
ज्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है.
Man and woman, they fall in love.
एक दूसरे और स्त्री मिलते हैं आपस में प्रेम हो जाते हैं उनका.
And then how much they torture each other.
और फिर कितना दूसरे को तड़पाते हैं.
And then they want children.
फिर वो बच्चे चाहते हैं.
How much misery does the child give them?
और बच्चा कितना तकलीफ देता है उनको.
It's like that. India fought so hard for independence.
भारत ने कितना लड़ाई की, संघर्ष किया स्वतंत्रता के लिए.
What kind of mess they created ever since.
और तब से कितना सारा जब भ्रमर पैदा कर दिया.
So what we're hoping for, Maya will not give us that.
जो हम आशा कर रहे हैं माया वो नहीं देगी.
That is the laws of nature.
ये प्रकृति के नियम है.
So this age of Kali is very favorable because sufferings are everywhere.
ये कलयुग बहुत अनुकूल है क्योंकि सब जगह पर दुख ही दुख है.
So we could really use our good intelligence and turn to Krishna with our heart.
अपनी सुबुद्धि का उपयोग करके कृष्ण की ओर हृदय के साथ हृदय की ज्ञान बोल सकते हैं.
There was a king named Maharaj Anga.
एक राजा थे जिनका नाम था महाराज अंग.
He married a beautiful queen.
उन्होंने बहुत सुंदर रानी से विवाह किया.
She had so many nice virtuous qualities.
उसके अंदर बहुत सारे सद्गुण थे.
She had beautiful face, beautiful form. She was very chaste, very polite, very, very nice.
सुंदर रूप था
और बहुत सुंदर स्वभाव भी.
But there was one technicality that was overlooked.
लेकिन एक जो है वस्तु थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया.
Her father happened to be death personified.
उसके पिता जो है वो साक्षात मृत्यु थे.
So they lived happily together. But of course, when you get married, it is duty to have children.
वो भी रह रहे थे लेकिन जैसे अगर आप विवाह करते हैं तो आप कर्तव्य है कि संतान उत्पत्ति करना.
According to the Shastra, if you take to the renounced order, you're simply dead. All your other responsibilities are finished.
Shastra says that if you take sannyas gharan karte hai, usse sare samajik jo zimmedari hai wo sab khatam ho jati hai.
But if you don't, you have so many different obligations.
Lekin agar aap nahi karte to bahut sari zimmedariyan rehti
hain. One of the obligations of Grihastha is to have children to carry on your dynasty.
और एक कर्तव्य ग्रस्त है कि संतान होना जिससे कि आपके वंश को जारी रख सके.
यू ओ दैट टू योर फोर फादर्स बिकॉज दे गेव यू योर बॉडी.
ये आपका ऋण है आपके पूर्वज के प्रति क्योंकि उन्होंने आपको यह शरीर दिया है.
ऑफ कोर्स इफ यू सरेंडर टू कृष्ण होलसेल 100% देन यू आर फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दीस अदर ऑब्लिगेशंस.
अगर आप शत प्रतिशत भगवान को समर्पण करते हैं तो आप इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं.
सो Maharaj Anga wanted to have a child and raise him in Krishna consciousness to become the next king.
Maharaj Anga chahte the ki wo santan ho jisko tu achi tarike se shiksha dekar dusra agla raja bana sake.
He was a great devotee.
Wo ek mahan bhakt hai.
And like every parent, they want their child to be such a wonderful little Vaishnava.
Har ek mata pita ki tarah wo bhi chahte the ki hamara santan jo hai bahut sundar Vaishnav bane.
I remember in the early days of Hare Krishna movement when people were young and just starting to have children in Krishna consciousness.
Mujhe yaad hai Hare Krishna andolan ki shuruaat mein jab log ke just jab santanon ki utpatti shuru ho rahi thi,
every parent was under the impression that their tiny little infant baby was a demigod that took birth from their womb.
हरे व्यक्ति सोचे थे कि ये छोटा सा बच्चा अब निकला है ये कोई देवता है जो गर्व से प्रकट हुआ है.
Sometimes that's true, but not all the time.
कभी कभी वो सत्य होता है लेकिन हर बार नहीं.
So Maharaj Anga was very happy, a beautiful little boy was born.
महाराज अंगा बहुत खुश थे कि एक सुंदर लड़के का जन्म हुआ.
And he tried to raise him in a nice environment of bhakti.
उनको भक्ति के माहौल में बड़ा करने का प्रयास किया.
But the child wanted nothing to do with bhakti.
लेकिन वो बालक ऐसा था कि वो भक्ति से सब कुछ लेना देना ही नहीं.
From his earliest babyhood, he began to manifest symptoms of cruelty and envy.
अपने बचपन से ही वो क्रूरता और ईर्ष्या के लक्षण प्रकट करने लगा.
He would play with his little playmates.
वो अपने मित्रों के साथ खेलते.
And he would ruthlessly torture them till they were screaming in pain.
उनको इतना दुख देते तड़पाते जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाते.
And the more they screamed in pain, the happier he became.
और जितना वो दर्द से चिल्लाते उतना ही उसको आनंद प्राप्त होता.
And ultimately he would murder them.
और अंत में उनकी हत्या कर देता.
Hare Krishna. And as he got older, he became worse and worse and worse.
जैसे बड़ा होने लगा और ज्यादा उसका स्वभाव और बुरा होने लगा.
His father was doing everything within his power, and he was the king, to somehow or other reform the character of his son.
उसके पिताजी ने पूरा प्रयास किया. वो तो राजा थे कि अपने पुत्र का जो चरित्र सुधार करने का.
Impossible.
असंभव.
The nature of the world.
दुनिया का स्वभाव है.
However great and powerful and learned and wonderful you may be, circumstances are beyond your control from time to time.
आप कितने पढ़े लिखे सुशिक्षित हो धनवान हो लेकिन स्थिति जो है वो कई बार आपके परे होती है.
Just like Hiranyakashipu, he conquered the whole universe. The little five-year-old Prahlad was out of his control.
इसे हिरण्यकशिपु ने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया लेकिन पांच वर्षीय जो प्रहलाद थे वो उनके वश में नहीं थे.
Here is the opposite situation.
यहाँ पर जो हम सुन रहे हैं वो बिल्कुल उल्टा है उसका.
Father is a devotee and son is a little tiny crawling asura. He tried everything because he was a devotee. He was very peaceful and very kind, Maharaj Anga. But his son just got worse and worse. Very, very painful when there's someone who you're supposed to be able to control and you cannot control them.
अरे बहुत दर्द की घटना होती है अगर जो व्यक्ति जिसको आपको वश में करना है वो बिल्कुल उसको वश नहीं कर पा रहे.
So he began to think that this whole world is such a miserable place.
वो सोचने लगे पूरी दुनिया बिल्कुल दुख का स्थान है.
I have beautiful palace, beautiful queen, all kinds of friends, relatives, family members, all my citizens love me and worship me, but I can't find any joy anywhere because my son is such a rascal.
और मेरे पास सब कुछ है पत्नी है राज्य है लेकिन मुझे कहीं सुख और शांति नहीं मिल रही क्योंकि मेरा पुत्र बदमाश है.
Like sand in sweet rice.
जैसे खीर में रेती मिलती हो.
Reti? Reti, Reti Kir. Something like that. But this is the nature of life. Everything can be so much according to our plan, but one little thing goes wrong and all you can do is suffer.
जीवन का स्वभाव है सब कुछ अच्छा होता है लेकिन एक चीज गलत हो जाने से बिल्कुल दुख प्रकट हो जाए.
वन लिटल थिंग गोइंग रॉन्ग मे कम टू आध्यात्मिक अधिदैविक अरिहरि भौतिक.
वो एक चीज जो गलत हो रही है वो आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक स्थिति के कारण.
एंड वी हैव नो कंट्रोल.
और उस पर हमारा कोई वश नहीं रहता.
रिसेंटली वन ऑफ आवर डिवोटीज वाज टेलिंग मी द वेल्थीएस्ट मैन ऑन अर्थ. He's the owner of a big computer software company. He's worth tens of billions of US dollars.
एक व्यक्ति महाराज को बता रहे थे कि एक बहुत जितने सबसे अमीर व्यक्ति जिसके पास सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके पास अरबों डॉलर की संपत्ति है.
He's the controller of the most powerful, productive, and profitable industry in the entire planet.
हालांकि वो जो है वो उस पूरे जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्री है उसके ईश्वर है.
His marriage is a disaster.
उनका विवाह जो बिल्कुल नष्ट हो गया
है. हरे कृष्ण. He even was found going to prostitutes just to get some relief.
और थोड़ा सुख प्राप्त करने के लिए वो वेश्याओं का संग करने लगे.
अरे वो. What kind of controller is that?
ये किस प्रकार का ईश्वर है?
And that's the biggest, most successful man on the planet.
और ये दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति है.
But things just don't go according to our plan.
हमारी योजना के अनुसार चीजें नहीं चल रही हैं.
Therefore, how do we create a happy environment? In this world,
इस दुनिया में कैसे सुखी माहौल पैदा कर सकते हैं?
We have to put aside our own plans and put Krishna's desire in the center. Then there can be harmony and unity.
हमें अपनी इच्छाओं को त्याग करके कृष्ण की इच्छाओं को केंद्र में रखना है, फिर वो सुख और समृद्धि हो सकती है.
So Maharaj Anga, seeing the terrible suffering in his own heart, he decided that actually. This is the mercy of Krishna.
महाराज अंदर ये सब दुख को देखकर उन्होंने निश्चय किया ये कृष्ण की कृपा है.
How would I ever surrender to Krishna wholeheartedly unless I was suffering like this?
अगर मुझे इस तरह से दुख नहीं मिलता तो मैं कैसे पूर्ण हृदय से भगवान को समर्पण कर पाता.
This is wonderful.
ये बहुत सुंदर है.
It's nectar.
ये अमृत है.
So he just without any attachments whatsoever entered into the forest and became a paramahamsa.
बिना किसी आसक्ति के और जैसा भी प्रवेश किया और परमहंस बन गए.
Meanwhile, back at home, Maharaj Vena was coronated as the king.
और यहां पर महाराज वेना को राज्याभिषेक किया गया.
From one point of view, he was an excellent king.
एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छे राजा थे.
That he was so ruthless in punishing any offenders that no rogues or thieves dared to do any mischief in his kingdom.
वो इतने ज्यादा क्रूर से सजा देने के लिए कि कोई चोर और डाकू ने कोई बुरे कार्य करने का साहस ही नहीं किया.
But there was a problem.
लेकिन एक समस्या थी.
He was the biggest rogue and thief. He kept everyone else away so that he could exploit everything and everyone.
और सबको इस तरह दूर रखता है जिससे कि वो खुद स्वयं दूसरों का शोषण कर सके.
And when we get power and influence, the tendency is that our ego becomes infatuated.
जब हमें शक्ति मिलती है, प्रभाव करने की शक्ति मिलती है, तो हमारा मिथ्या अहंकार बढ़ जाता है.
Greatest danger is if someone worships you and you fall under the illusion that you are worshipable.
सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी आराधना करता है और आप सोच रहे हैं कि मैं आराधनीय हूं.
Maharaj Vena had so much power, control, and people had to bow down to him that he came under the illusion that he was God.
Maharaj Vena ke paas itni shakti thi, wo itne bhram mein jo sochne lage ki main Bhagwan hoon.
Better than God.
And Bhagwan se bhi zyada achha hoon.
Therefore, he outlawed any other puja or yagya to anyone except him. It was a federal offense to worship God or the demigods. And he would punish. So people had to chant. The only mantra people were allowed to chant were mantras in glorification of Maharaj Vena.
और जितने महाराज वेणु का गुणगान करते हुए मंत्रों का गान करना किया जा रहा था.
ओम श्री वेनाय नमः. Something like that.
इस तरीके से मंत्र.
Meanwhile, the Brahmins, they were very much feeling distressed that people were not allowed to worship the Lord.
ब्राह्मणों को बहुत दुख हो रहा था कि भगवान की आराधना करने लोगों को नहीं दिया जाता.
So they approached King Vena with humility and respect.
बड़े आदर और नम्रता से वो महाराज वेणु के पास आए.
This is not right what you are doing.
आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है.
The Supreme Lord Vishnu is the source of everything that exists.
जो सब कुछ है उसके स्रोत है भगवान विष्णु है.
And the demigods are his deputed agents to provide the necessities of life.
और देवता जो है उनके प्रतिनिधि हैं जीवन की आवश्यकताओं को लोगों को देने के लिए.
You must allow people to do their worship.
आप लोगों को उनकी पूजा करने दीजिए.
Upon hearing this, he became all the more arrogant.
और इस सुनने के बाद वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गए.
He laughed at them in anger.
क्रोध अवस्था में वो उन पर हंसने लगे.
And he said, "You are fools."
कहने लगा कि आप मूर्ख हैं.
Don't you not know what the Shastra says?
आप जानते नहीं कि शास्त्र कहता है.
The Supreme Lord and all the demigods are all present within the body of the king.
भगवान और सारे देवता जो है राजा के शरीर में प्रकट होते हैं.
A perverted reflection of Bhagavatam. If you water the root of the tree, all parts of the tree are nourished.
तो भागवत का एक परिवर्तित रूप है कि अगर आप पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो अपने आप सब जगह पर पानी का प्रभाव.
His illusion was if you worship me, everything will be perfect.
वो बताने लगे कि अगर आप मेरी आराधना करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा.
And if you don't worship me, you will punish.
अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको सजा दी जाएगी.
So they decided that this Vena must die. So they chanted mantras. And the Brahmins have such great power, but they don't like to use their power for political purposes. Because this compromises their service to humanity. But this was a desperate emergency. So they chanted some mantras, Hamkar, and that caused King Vena to die. His mother, who was naturally attached to him, was so aggrieved that she preserved his body in various medicinal oils and herbs. So that was a great relief. But the nature of the world is one solution creates another problem. So yes, the king was dead, but then the rogues and thieves came out again. One day the Brahmins were on the bank of the river Saraswati discussing Harikatha. And they saw dust everywhere in the air. They understood what this dust was. It was the dust raised from the feet of all the rogues and thieves who were just plundering the earth. So they decided that Maharaj Vena, with all of his disqualifications, still he subdued them. We need a king. So they went and obtained Vena's body. And through their Brahminical mantras, they churned his body. First thing that happened is a personality who was blackish in color came out from his thighs. He was the personification of all the sins in King
Vena.
His name was Bahuka. And he was sent into the jungles. Now that Maharaj Vena was clean, his body, they churned it again. And what happened is, the Supreme Personality of Godhead in his Shaktivesh incarnation of Prithu Maharaj and his beloved consort Archi appeared in this world. So we are all something like Maharaj Vena's. So many sinful desires are within our hearts. Lust, anger, envy, greed, pride, illusion. So many desires to want to enjoy the resources of material existence, which are all meant for the pleasure of Krishna. So much false ego. So much self-centered mental thinking. A saintly person, every thought is for the welfare of others. Haridas Thakur didn't mind being beaten brutally through 22 marketplaces. He only concerned himself with giving Harinam to others.
हरिदास ठाकुर को ये बात की उसको चिंता नहीं थी कि उनको 22 मार्केट में पीटा जा रहा था, वो यही सोच रहे थे कि दूसरों को हरि नाम देना है।
श्रील प्रभुपाद ही थे कि माइंड हार्ट अटैक्स पॉवर्टी परसिक्यूशन He was only thinking how to give Krishna prema to others.
The Prabhupada ji ne swayam ke heart attack aur garibi aur dukh ko parwah nahi ki, wahi puri tarah kaise Krishna bhavana dusron ko di jaye.
But conditioned soul in every situation they're thinking what's good for me.
Ye bhava jo hai har sthiti mein sochta hai mere liye kya acha hai.
I want to see something that gives pleasure to my eyes.
मैं वो चीज देखना चाहता हूँ जो मेरे आंखों को आनंद दे।
I want to hear something that gives pleasure to my ears, my nose, my mouth, my flesh.
और मैं वही चाहता हूँ जो मेरे कान को, मेरी जीभ को, सबको आनंद मिले।
And what about my false ego?
और फिर मेरे मिथ्या अहंकार का क्या?
I have to situate myself in a situation where I'm properly respected.
मैं स्थिति में रहना चाहता हूँ जिससे लोग मेरे अच्छी तरीके से आदर करें।
Even when we're engaging in devotional service, these desires are often prominent.
हम भक्ति में लगे हों, तो ये इच्छाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
So somehow or other, we have to churn our hearts to remove all of these anarthas.
तो किसी ना किसी तरीके से अपने हृदय का मंथन करना है जिससे सारे अनर्थ जो है वो निकल जाए।
That is the process of sadhana bhakti.
ये साधना भक्ति का तरीका है।
अदोषत तथा साधु संगो था भजनाक्रिय तत्व अनर्थ में वृत्ति साथ तत्व निष्ठा रुचि That first is a little faith. And by that faith, Krishna brings us into the association of devotees.
पहला सीधा कि हमारे अंदर थोड़ी श्रद्धा होती है और श्रद्धा से भगवान हमें भक्तों के संग में ले आते हैं।
Then the journey begins.
और फिर मंथन शुरू होता है।
We accept spiritual master.
आप गुरु को स्वीकार करते हैं।
And he teaches us the process of bhajana kriya.
और वो हमें भजन क्रिया सिखाते हैं।
Where we follow regulative principles, we hear about Krishna, we chant about Krishna, we worship the deities, we serve the Vaishnavas, we engage in various duties under the instruction of Guru, Sadhu and Shastra. This is the process of sadhana bhakti.
ये sadhana bhakti की विधि है कि गुरु शास्त्र और साधु के निर्देश में हम नियमों का पालन करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, विग्रह की आराधना करें। ये साधना भक्ति का तरीका।
The result is अनर्थ निवृत्ति
सफल है। अनर्थ निवृत्ति क्या
बहु का comes out of us।
हमारे से बहु का जो हमारे शरीर से बाहर होता है।
All the black sinful ambitions and conceptions are removed from our hearts।
सारे पाप पूर्ण जो इच्छाएं और अभिलाषाएं हैं वो बाहर निकल आते हैं।
But that's not all।
लेकिन वो शांत नहीं है।
We have, that's the liberated state।
वो मुक्त अवस्था है।
But we have to continue the journey process।
फिर भी हमें जो है मंथन को जारी रखना है।
We must go on serving Vaishnavas।
हमें वैष्णव की सेवा जारी रखनी है।
Worshipping the deity।
विग्रह की सेवा करना
है। Hearing Srimad Bhagavatam।
श्रीमद् भागवत का श्रवण करना।
And chanting the holy
name। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare। Gradually
और उसके बाद फिर धीरे धीरे निष्ठा हमारी श्रद्धा बहुत सुदृढ़ हो जाती है।
देन रुचि, वी डेवलप ए वेरी वेरी डीप हार्टेड एंथुसियाज्म फॉर डिवोशनल सर्विस।
और फिर बाद में हमारी रुचि पैदा होती है भक्ति के लिए, कार्य के लिए।
एंड देन अशक्ति, वी बिकम कंप्लीटली अटैच्ड टू कृष्णा इन द पाथ ऑफ सर्विंग कृष्णा।
अशक्ति यानी कि हम कृष्णा और कृष्ण की सेवा करने की विधि के प्रति
Especially we become attached to the association of devotees, hearing the glories of the Lord and chanting the names of the Lord. And we go on journeying. And next, bhava, love of Krishna. And ultimately prema. And that prema, that realization of Krishna is so powerful that it can create such immense benefit to the whole world.
और प्रेम इतना शक्तिशाली है कि पूरे दुनिया को जो है उसका लाभ दे सकता है.
One time devotees were together and Prabhupada was asked the question, what pleases you the most? Devotees were wondering, will he say book distribution? Will he say cow protection? Will he say college preaching? Will he say building temples? In Mayapur, Vrindavan, or anywhere else? Prabhupada replied, what pleases me most is when you love Krishna. Because if you love Krishna, Krishna will manifest and empower you in so many ways, so all these things can happen.
क्योंकि आप कृष्ण से प्रेम करोगे तो कृष्ण आपको शक्ति प्रदान करेगी, फिर सारी सब चीजें अपने आप प्रकट होने लगी.
It is a fact. All the book distribution, millions of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatams, Chaitanya Charitamritas all over the world. Hundreds of beautiful temples in Mayapur, Vrindavan, Bombay, even Belgaum. This beautiful temple. Who could ever imagine in this little village of Belgaum, little city, I'm sorry, with just a few devotees who don't have much income or anything else, there's a wonderful temple that thousands of people could sit in at a time to hear Srimad Bhagavatam.
कौन ये कल्पना कर सकता है कि छोटे से शहर बेलगाम जैसे में कि एक सुंदर देवा जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बैठकर श्रवण कर सकते हैं.
And there's farm communities, and there's schools, so many wonderful projects within ISKCON.
ऐसे ISKCON में ऐसे अनेक स्कूल और फार्म प्रोजेक्ट्स हैं.
What is the source of all of it?
इन सब चीजों की मूल क्या है?
One man who loved Krishna.
एक व्यक्ति जो कृष्ण से प्रेम करते हैं.
The basis of everything that we have is Srila Prabhupada's love for Krishna.
जो सब कुछ हमारे पास है उसका आधार है कि प्रभुपाद ही कृष्ण से प्रेम करते हैं.
Because when the pure heart loves Krishna, Krishna reveals himself.
जब व्यक्ति किसी तरीके से कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण दूसरों के प्रति प्रकट हो जाते हैं.
And one who loves Krishna is one who surrenders to Krishna.
और कृष्ण से प्रेम करने वाला वो व्यक्ति है जो कृष्ण का समर्पण करता है.
He no longer has his own ego.
उसका स्वयं का कुछ अहंकार नहीं रहता.
Krishna, I am yours.
कृष्ण मैं आपका हूँ.
I am your instrument. Speak through me. Work through me. Let me be your puppet.
मैं आप मेरे द्वारा बोलिए, मेरे को अपना कठपुतली बना दीजिए.
And Jaladuta, Srila Prabhupada prayed, please Krishna, make me your puppet.
जगदूत में श्री प्रभुपाद ने इस तरह प्रार्थना की कि हे कृष्ण मुझे अपना कठपुतली बना दीजिए.
With the strings attached to your lotus-like hand, make me dance as you want me to dance.
आपके करकमलों से जो है रस्मियों के द्वारा मुझे आप नचाइए जैसा आप नचाना चाहते हैं वैसे नचाइए.
Please give me the words to penetrate their hearts with your message.
मुझे वो शब्द दीजिए जिससे कि उनके हृदय को अंदर प्रवेश कर सके आपके संदेश के द्वारा.
Where there is love, there is total humility and submission to the beloved.
जहाँ पर प्रेम होता है, वहाँ पर जितने प्रेम करते हैं, उसके प्रति नम्रता की भावना अपने आप प्रकट होती है.
And it is that love that had the power to do everything.
और ये प्रेम के अंदर शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकता है.
So Prabhupada said, "What will please me the most is you love Krishna. Then everything else will come."
प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी सबसे प्रसन्नता तब होगी जब आप कृष्ण से प्रेम करोगे.
बट इफ यू आर नॉट डेवलपिंग लव ऑफ कृष्ण देन एवरीथिंग दैट वी हैव अकॉम्प्लिश्ड कैन इजीली क्रम्बल.
लेकिन अगर आप कृष्ण से प्रेम नहीं करते और दूसरी चीजें कई जो हम उपलब्धियां प्राप्त करते हैं वो बड़े आसानी से नष्ट हो सकती है.
He has given us so much.
उन्होंने इतना सारा हमें दिया है.
But first and foremost, he's given us the process of how to love Krishna.
लेकिन सबसे पहले उन्होंने वो तरीका हमें सिखाया है कि कैसे कृष्ण से प्रेम किया जाए.
If we're not chanting our rounds attentively every day, if we're not hearing Bhagavat every day, if we're not following the principles and serving devotees every day, then that will create corruption.
और इससे भ्रष्टाचार हो जाएगा.
And then all wonderful things become disturbed.
और सब सुंदर चीजें जो हैं वो विचलित हो जाएंगी.
So therefore, this is the first and foremost duty of every devotee.
इसलिए हर एक भक्त का इस सर्वप्रथम पहला कर्तव्य है.
To perform their sadhana bhakti and their seva in such a way that they can achieve love for Krishna.
अपनी साधना भक्ति को उस तरीके से करें जिससे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सके.
And get this bahuka out of our hearts.
और अपने हृदय से बहुका को बाहर फेंक दें.
All these accumulated sins and materialistic desires.
और सारे भौतिक इच्छाओं और पापों को भी बाहर कर दें.
And let Maharaj Prithu appear.
और फिर महाराज प्रथम जो है प्रकट हमारे
हृदय
और शुद्ध चेतना में दुनिया का राज्य करें.
In this spirit, we should be very, very attentive and determined to chant the holy name.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
भावना से हमें ध्यानपूर्वक और दृढ़ता से भगवान के नाम जप कीर्तन करना चाहिए.
I would like to offer my deepest gratitude to all of the devotees of Sri Radha Gokulananda Mandir in Belgaum for the incredible amount of devotional service they have rendered in organizing Radha Yatra.
मैं सब राधा गोकुलानंद के भक्तों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि कितने ज्यादा दृढ़ता के साथ रथ यात्रा उत्सव का सेवाओं का आयोजन किया है.
Under Devamrit Prabhu's nice guidance, all of you have worked so hard.
देवामृत प्रभु के बहुत सुंदर निर्देश के अंदर आप सब लोगों ने कितनी कड़ी मेहनत की है.
But Lord Jagannath wasn't satisfied with just your hard work.
लेकिन भगवान जगन्नाथ आपके सारे मेहनत से उतने संतुष्ट नहीं थे.
He wanted to see your surrender.
वो आपके समर्पण को देखना चाहते थे.
Now, what is the meaning of surrender?
समर्पण का अर्थ क्या होता है?
When we know, we'll never have to take birth in this material world again.
अगर हम इस बात पर जान लेंगे तो फिर से भौतिक जगत में संसार में जन्म नहीं लेना.
We're thinking that we're surrendered.
हम ऐसा सोच रहे हैं कि मैं पूर्ण से समर्पित हूँ.
I ate prasad today instead of karmi foods, so I am surrendered.
मैं कर्मी भोजन करने के बजाय कम से कम प्रसाद खाया तो मैं समर्पित हूँ.
I finished my rounds today, I am surrendered.
मैंने तब जब पूरा कर लिया मैं समर्पित हूँ.
We advertised 50,000 pamphlets, we set up a big pundal at military Mahadev's abode.
हमने 50,000 पैम्पलेट बांटे और मिलिट्री महादेव के धाम में हमने बहुत सुंदर कमाया.
Worked so hard, foaming at our mouths to put up hoardings and all kinds of banners all over the streets.
हमने बहुत ज्यादा मेहनत की और अनेक प्रकार के जो है बैनर्स वगैरह लगाए सड़कों में.
We had to raise so many funds and collect for tens and thousands of people's prasad.
और 10,000 की संख्या में लोगों के प्रसाद के लिए हमने धन एकत्रित किया.
So we were thinking we were surrendered.
हमने समर्पण कर दिया.
But Krishna's idea of surrender is something else.
लेकिन कृष्ण का विचार जो समर्पण का है वो कुछ और है.
Oh, you have done so much.
आपने इतना किया है.
I'm very, very pleased with your hard work, your determination, and your united efforts.
मैं आपके दृढ़ निश्चय से और एकत्रित प्रयासों से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ.
So I will reward you.
तो मैं आपको इनाम दूंगा.
Now a materialistic devotee would think the reward is after Ratha Yatra I can lay on the beach in Goa and drink coconut prasad. But Krishna's idea of reward is not what we always expect.
लेकिन कृष्ण का जो इनाम देने का तरीका है वो ऐसा हमेशा नहीं होता जो हम आशा करते हैं.
कृष्ण's mercy is when he takes us to higher platforms of devotion.
कृष्ण कृपा जब हमको भक्ति के ऊंचे ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं.
Therefore, in reciprocation for all the hard work and all the planning and all the united efforts you made, at the last minute, Krishna created havoc.
और इतने ज्यादा प्रयास मिलकर सेवा करने का इनाम ये होगा कि कृष्ण ने बिल्कुल भ्रांति पैदा कर दी.
यस्या हम अनुकृणमे हरिष्ये तदनाम शनाय हरिभो. श्रील प्रभुपाद tells us that when Krishna is pleased, he takes everything away from you. That's why so many people worship demigods. But in taking, with one hand, he gives the most auspicious treasure with the other, if you just allow him to do so.
अगर आप उनको ऐसा करने दें तो एक हाथ से तो ले लेते हैं कि दूसरे हाथ से सबसे मूल्यवान चीज प्रदान करते हैं.
So Krishna, out of his great, great mercy, reciprocated with your devotion by giving his mercy.
और कृष्णा आपके अपनी कृपा से आपके सब प्रयासों का फल दिया कि उन्होंने अपनी और कृपा दिया.
Form of that mercy was such a disaster.
और वो कृपा का रूप क्या था कि बिल्कुल भवंडर पैदा हो गया.
That the only possible way that this Rath Yatra could go on, his devotees had to give up their sleeping, they had to be totally united, and they had to work, 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 and pray from the core of their hearts, Krishna, save us.
और तरीका यही है कि लोगों को अपनी रात की नींद का त्याग करके मिलजुल कर मेहनत करनी पड़ी और भगवान से प्रार्थना करना पड़ी, कृष्ण आप ही मुझे बचाइए.
That is mercy.
ये वास्तविक कृपा है.
श्री जगन्नाथ भगवान की. When Devamrit Prabhu was telling Chandramali Maharaj, Jananivas Prabhu, and myself the story, how at the last minute they were approaching so many big, big, big politicians and other influential people trying to somehow or other get the permissions.
Devam Prabhu jo hai mujhe Chandramali Maharaj ko aur Jananivas Prabhu ko bata rahe the कि किस तरीके से वो अलग अलग राजनीतिज्ञों से प्रयास कर रहे थे परमिशन प्राप्त करने का कार्यक्रम के लिए.
कृष्ण इज इन द हार्ट ऑफ एवरीवन.
कृष्ण सबके हृदय में.
He wasn't about to inspire anyone to give permission.
उन्होंने किसी को प्रेरणा नहीं दी परमिशन देने के
लिए. And plus, Jananivas Prabhu, he's the head pujari in Mayapur.
और Jananivas Prabhu मायापुर के हेड पुजारी हैं.
There is a deity called Kshetrapala Mahadev.
Ek vigraha hai jiska naam hai Kshetrapala Mahadev.
Lord Shiva is the protector of the holy dham.
Shivji jo hai wo dham ke sanrakshak hai.
He protects the dham and he protects the sanctity of the devotees' hearts.
Wo dham ki raksha karte hain aur bhakton ke hriday ki pavitrata ki raksha karte hain.
So military Mahadev is non different than that Kshetrapala
Mahadev.
I don't think any Puranas have this name, military Mahadev. Some sort of a east meets west. But whatever you call them, Nam Namakari Bahuda, the Lord has many, many names. Sri Bhagavan Military Mahadev. He was protecting the devotees. How? By not allowing that Pando program to be held in his grounds.
वो भक्तों की रक्षा कर रहे थे कैसे कि जिससे वो अपने ग्राउंड में इस कार्यक्रम को नहीं करने दे रहे.
And Devamrit Prabhu was saying it was ecstatic.
Devamrit कह रहे थे कि बहुत सुंदर था.
You could have easily given up and say, well, next year we'll try again.
रात आए कह रहे थे ठीक हो अभी छोड़ो अगले साल प्रयास करेंगे.
One thing we have noticed in our years in Krishna consciousness, as long as you don't give up, you're never defeated.
एक चीज जो हमने कई वर्षों में कृष्ण देखा है, जब तक आप जो है प्रयास नहीं छोड़ते तब आप हारेंगे नहीं.
In any project in Krishna consciousness, we may lose terribly so many battles.
और कई बड़े प्रोजेक्ट में हम कई बार ऐसे छोटी मोटी हार हो सकती है.
If we give up, we lose the war.
लेकिन अगर हम प्रयास छोड़ देते हैं तो हम तकलीफ में आते हैं.
However much all odds are against us,
चाहे कितनी भी स्थिति हमारे विपरीत क्यों ना हो,
if we just don't give up, we just keep struggling and fighting for Krishna.
अगर हम कृष्ण के लिए संघर्ष करते रहें, प्रयास करना नहीं छोड़ें,
then it is guaranteed the war will be won.
निश्चित है कि जो युद्ध है उसमें हमारी विजय होगी.
बिकॉज द पावर ऑफ कृष्ण इज एब्सोल्यूट.
क्योंकि कृष्ण का जो शक्ति है वो पूर्ण है.
व्हाई डिड कृष्ण पुट द पांडवस इन सच ए डिफिकल्ट सिचुएशन.
कृष्ण ने क्यों पांडवों को इतने तकलीफों में डाला?
टू शो देयर ग्लोरीज.
उनके ख्याति को दुनिया को बताने के लिए.
व्हाई डिड कृष्ण पुट प्रहलाद महाराज इन सच डिफिकल्ट सिचुएशन.
कृष्ण ने क्यों प्रहलाद महाराज को इतने कठिनाइयों में डाला?
वन डे ही इज लेइंग इन अ बेड ऑफ पॉइजनस सर्पेंट्स.
एक दिन उनको सांपों के बीच में डाला गया.
अनदर डे ही इज पुट अंडर द सी विद अ माउंटेन ऑन टॉप ऑफ हिम.
दूसरे दिन समुद्र में फेंका जा रहा है, ऊपर से पर्वत से दबाया जा रहा है.
अनदर डे ही इज प्लेस्ड इन ब्लेजिंग फायर्स.
तीसरे दिन उनको भटकती हुई अग्नि में डाला जा रहा है.
बट ही डिडंट गिव अप.
लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, त्याग नहीं किया.
एंड द नेक्स्ट डे He's sitting on the throne of Hiranyakashipu.
और अगले दिन फिर हिरण्यकशिपु के राज्य सिंहासन पर विराजमान हैं.
Ruling the dynasty.
और पूरे वंश का राज्य चला रहे हैं.
हरे कृष्ण. श्री प्रभुपाद इन बाउरी. Everything was going against him.
श्री प्रभुपाद ने बाउरी न्यूयॉर्क में सब चीजों के विरुद्ध हो रही
थी. He was trying to do his. He had no assistance, no servants, no money, nothing.
उनके पास कोई मदद करने के लिए था, कुछ पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था.
He was just had a little old Indian typewriter. He was trying to type the his translations, and the typewriter was stolen.
एक ही टाइपराइटर था जिससे कि वो टाइप करने का प्रयास कर रहे थे, और वो भी चुरा लिया गया.
And he was kicked out of his house.
उनको घर से या बाहर निकाल दिया गया.
And he had nowhere to go.
उनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं था.
It was cold.
और वहां सर्दी थी.
And everybody in India was saying, Swamiji, come back, it's impossible.
और सब भारत में बोले, Swamiji, वापस आ जाइए, ये असंभव कार्य है.
He didn't give up.
उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा.
His Guru Maharaj, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, they wanted this movement to spread all over the world, and he was determined, I must do it.
उनके गुरु महाराज चेतना प्रभु नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि पूरा आंदोलन पूरी दुनिया में फैले, और उन्होंने निश्चय किया कि मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा.
From an unknown beggar on the streets of the ghettos of New York, he became world acharya.
न्यूयॉर्क के सड़कों में एक बिल्कुल अजाने व्यक्ति थे, वो दुनिया के आचार्य बन गए.
This is the example.
ये एक उदाहरण है.
We're in this sampradaya.
हम इसी संप्रदाय में आ रहे हैं.
So Krishna's kira going to give us the best mercy.
कृष्ण को सर्वोत्तम कृपा देने वाले हैं.
Devamri Prabhu was saying, it was blissful to see how the devotees, Belgaum is known for devotees who like to fight against each other.
Belgaum is इसी में मशहूर है कि भक्त आपस में बहुत झगड़ा करते हैं.
Those who know the history have some understanding of this.
जो इतिहास को जानते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं.
Wonderful devotees, simple hearted, sweet, nectarine Vaishnavas.
बहुत सुंदर अमृतमय स्वभाव वाले भक्त हैं.
But something about Belgaum makes people who have these little disagreements.
Belgaum का स्वभाव ही है कि लोग आपस में समझौता नहीं.
Yes? No? Maybe. Sometimes. But on this day, everyone in the urgency of saving Jagannath's festival, they were working in total unity. People who hardly do any service were coming out, willing to surrender their lives on that night.
लेकिन उस रात्रि को जो व्यक्ति सब लोग मिलकर सेवा कर रहे थे, और जो लोग कभी सेवा नहीं करने वाले वो भी सेवा करने आ गए.
कृष्ण गेव यू अ टेस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड.
भगवान कृष्ण ने आपको आध्यात्मिक धाम का एक आस्वादन कराया.
एंड इन द एंड मोस्ट वंडरफुल फेस्टिवल.
और उसके बाद बहुत सुंदर उत्सव.
राइट एट द लोटस फीट ऑफ श्री राधा गोकुलानंद.
और श्री राधा गोकुलानंद के चरण कमलों के पास.
And when people have a nice experience, they understand this is a holy place, let me come.
और लोगों का अच्छा अनुभव होगा तो वो समझ जाएंगे कि ये बहुत पवित्र स्थान है, मैं भी वहां जाऊं.
दिस इज द थीम ऑफ टुडेज क्लास.
ये आज के क्लास का यह मुख्य भाग
है. एन अ लिविंग एग्जांपल ऑफ द एविडेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल.
और इस सिद्धांत का एक ज्वलंत उदाहरण प्रकट है.
That there are good times and bad times, they will come of their own accord.
अपने आप से कभी अच्छी स्थिति होगी, कभी बुरी स्थिति होगी.
Every situation we should be welcoming the opportunity to surrender to Krishna.
हर एक स्थिति में हमें कृष्ण का समर्पण करते रहना चाहिए.
The pleasures and pains of the body and mind will come and go like the waves in the ocean.
शरीर और मन के सुख और दुख जैसे सागर की लहरों की तरह आएंगे और जाएंगे.
But if we have the proper understanding of Krishna consciousness, each one of those waves will bring us closer and closer and closer to the shore of the spiritual world.
लेकिन हमें कृष्ण भावना की अच्छी समझ है तो ये सब लहरें जो हैं धीरे धीरे हमको कृष्ण भावना के करीब ले आएंगे.
From our heart, we must turn to Krishna.
अपने हृदय से हमें कृष्ण की ओर मुड़ना है.
With great attention,
बड़े ध्यान पूर्वक,
determination,
दृढ़ निश्चय के साथ,
and enthusiasm,
और उत्साह के साथ.
Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद.
Is there any question?
किसी को कोई प्रश्न है?
Yes, in our midst today.
हमारे बीच में दो बहुत ही विशेष मेहमान आए हैं.
All of you are knowing His Holiness Chandramali Swami Maharaj.
His Holiness Chandramali Maharaj को आप सब जानते
हैं. A very senior disciple of Srila Prabhupada.
श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं.
He preaches in America.
अमेरिका में प्रचार करते हैं.
He also preaches in Europe and often in India.
यूरोप में प्रचार करते हैं, कई बार भारतवर्ष में भी.
He is very humble, very gentle, very saintly वैष्णव.
बहुत नम्र और सुशील स्वभाव वाले वैष्णव.
Let us welcome him.
उनका स्वागत करिए.
The next guest we will welcome, you have never seen in Belgaum ever
before.
In fact, you never see him anywhere except Mayapur.
वास्तव में मायापुर के अलावा कहीं भी उनके दर्शन नहीं होते.
How he has come here is simply Prabhupada's causeless mercy.
ये कैसे वो यहाँ आ गए, ये तो सिर्फ श्री प्रभुपाद जी की अहेतुकी कृपा है.
Inconceivable, infallible mercy.
अचिंत अच्युत कृपा.
There's no words to express.
इसके शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता.
Janani Vas Prabhu met Srila Prabhupada, I think, in 1970.
1971.
Same year I happened to meet
Srila Prabhupada.
But there's a difference. I was a rascal and he was a very saintly person.
लेकिन वो अंतर है. महाराज अपने आप में बोल रहे हैं कि मैं तो बदमाश था लेकिन वो बस साधु व्यक्ति.
Janani Vas came to Mayapur town.
Janani Vas प्रभु मायापुर धाम में.
How many of you have been to Shida Mayapur?
आप में से कई लोग मायापुर गए हैं?
At that time it was just a paddy field.
उस समय सिर्फ एक खेत था वहाँ पर.
With one straw thatched hut.
बस एक जो है कुटिया बनाई हुई थी वहां पर.
प्रभुपाद लिव्ड इन.
इसमें प्रभुपाद जी निवास करते थे.
And he had his deities of Radha Madhava.
उनके पास राधा माधव के विग्रह.
And he assigned Janani Vas Prabhu to be the head pujari of that thatched hut.
और उन्होंने उस कुटिया में Janani Vas Prabhu को हेड पुजारी के रूप में सेवा दी.
And told him to remain there always and serve Sri Sri Radha Madhava.
उनसे कहा कि आप यहीं पर रहिए और श्री राधा माधव की सेवा करिए.
Now Mayapur at that time, during the rainy season, there was floods and no facilities whatsoever.
मायापुर उस समय जब बाढ़ थी और रहने के लिए कोई सुविधा नहीं थी ठीक से.
Over the years there were communal attacks, devotees getting blown up and shot at.
अनेक प्रकार के आक्रमण हुए थे, कई भक्तों पर बंदूक से प्रहार किया गया था.
Very, very difficult. But Jananivas Prabhu, taking Prabhupada's order on his head, never left the deities. Since 1971, he has been the head pujari of the headquarters of the International Society for Krishna
Consciousness.
And remained faithful, steady, humble, and sincere through every kind of difficulty. It is said that gold is purified and also tested to be gold when it is put into blazing fire. If it is not real gold, when you put it in fire, it turns black or it burns. But real gold, the more the fire heats up, the brighter and more effulgent it becomes. Similarly, if we are sincere devotees, the more the difficulties and tribulations come into our life, the more we shine in our Krishna consciousness. But if we are not so sincere, we become covered up as burnt. So Jananivas Prabhu, in remaining so steady through so many upheavals, inconveniences, and disasters, how many times he must have had malaria and everything else, living amongst poisonous snakes, but going on offering his puja to the
deities.
He is personification of what we're trying to express in this class today. Never giving up his service, steady as Govardhan Hill. He's saying Govardhan Hill is sinking. That means he's admitting that he's in such pains of separation from Krishna due to his love. And really, he and his brother Pankajangari Prabhu, they're very quiet, unassuming, never talk nonsense. I feel so purified when I'm with
him.
Because my tendency is to talk all unnecessary subject matters. But he's not interested in any of these unnecessary subjects. He's quiet and grave. In his presence, I feel ashamed. And this is very healthy for me. He is one of the pillars of sanctity within the Hare Krishna
movement.
He may not come front in public scenes making a nice show, but he just remains in the background maintaining his loving devotional service to Sri Radha Madhava, and continuing his good sadhana, and just as an emblem of sanctity and purity within our
movement.
And those who are most fortunate will recognize that. Those who are not so fortunate will just overlook it because they remain so quiet and so much in the background of social social interchanges.
जो इतना भाग्यशाली नहीं है वो ये समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा उतना सामाजिक रूप से मिस नहीं हो रहे.
So somehow or other, by his great kindness and Srila Prabhupada's mercy, he has come to Belgaum.
कितने भी तरीके से उनकी कृपा से श्री प्रभुपाद की कृपा से वो बेलगाम में पधारे हैं.
Wherever there is deity worship in the world, people are longing for him to come.
यहाँ पर भी दुनिया में मूर्ति की पूजा होती है लोग चाहते हैं कि वो वहाँ पर आए.
New York, London, Los Angeles, Paris, all these places, Jananibas, please come.
ये सब स्थान जो महाराज ने बताए वहाँ पर उनको निवेदन करते हैं जनानी शुरू आए.
But he just goes on with his service to Srila Prabhupada.
लेकिन वो श्री प्रभुपाद की अपनी सेवा को चालू रखते हैं.
But Jagannath must be very pleased with you.
लेकिन भगवान जगन्नाथ जरूर आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न
होंगे. Sent Jananibas to this small unknown town of Belgaum.
कि उन्होंने जनानीवास लोगों को एक अजाने हुए जो शहर है बेलगाम वहां भेजा.
So we are very, very grateful to him.
हम उनको बहुत उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं.
It is my humble request to all of you. Try to understand that Krishna consciousness is not a show bottle religion. It is a spiritual movement based on deep, sincere surrender of the heart.
आप सबको मैं निवेदन है कि आप समझिए कि किस तरह से कृष्ण भावना कोई दिखावा नहीं है लेकिन अंदर भी गया उस समर्पण की भावना से.
And this wonderful Vaishnav represents that principle.
और ये जो सुंदर वैष्णव इसका प्रतिनिधित्व करते हैं.
Jananibas Prabhu, will you kindly stand up? Please. You see, I told you. Everyone, wholeheartedly, as loud as you can, by chanting Hari Bol with raised arms, welcome Jananibas Prabhu.
Hello, Devi.
Just with the sound of his name, Krishna gives his darshan. Jananibas Prabhu, please come sit. Give microphone. Could you sit on this, please? As a humble service to the Vaishnavas.
I've been instrumental in hearing you all chanting Hari Bol three times, so I think my visit here has been successful. But when I was coming on the train from Calcutta, the night train, I woke up in the night and I felt, what am I doing? I'm going the opposite direction from Radha Madhava and Mayapur. Why am I going in the opposite direction?
जब मैं आ रहा था कलकत्ता से ट्रेन में तब फिर मैं अचानक रात में सोचने लगा कि कैसे मैं राधा माधव से दूर उल्टी दिशा में जा रहा हूँ.
And I was feeling kind of lonely and separated.
मुझे विरहता से अनुभव हो रहा था.
And I was thinking, we're coming here, we have to go to some Rath Yatra festival in Mangalore and another place, Madras. Just more or less for some ritualistic purposes. So I thought, what is it? Why did I leave? I was simply asked to leave. Well, I was wondering why I was leaving, and now I'm feeling kind of lonely and in separation. But the devotees have told me that in the Rath Yatra in Mangalore, Radhanath Swami will be there. And I began to think of Sri Radhanath Swami's loving affection that he shows all the devotees. And immediately my loneliness and separation vanished.
और मेरा अकेलापन अग्रह की भावना सब दूर हो गई.
And I became very happy.
और मैं बहुत खुश हो गया.
To be on my way.
कि मैं अब सही रास्ते पर जा रहा हूँ.
To meet Radhanath Swami.
श्री राधानाथ स्वामी महाराज से मिलने के लिए.
And I was thinking that when we have this kind of devotees who are always showing affection to others, and this is what we need in life, because we feel here we can take shelter. Here is protection. Here is safety. And then I became, my moroseness, it vanished. And then I began thinking that most probably when I see him, he'll also invite me to stay a bit longer. I was anticipating. And Krishna fulfilled my desires. So Krishna acts through his devotees. So what Radhanath Swami was saying about his being the desire of Lord Jagannath, everything is moving by his desire, but ultimately that desire is manifest through his devotees.
So Radhanath Mahajoya Jagannath Icha, unki icha hai, lekin jo bhakton ke dwara hi prakat hoti hai.
So it is only by the grace of Radhanath Swami that I am here today. And I've experienced all the wonderful devotees here. And then really enjoyed the Rath Yatra festival. And also he's promised to take me another few places before I go back. So I consider that the success of this trip, when he asked me, please come with us for a few more days.
मैं अपनी यात्रा की सफलता माना जब उन्होंने कहा कि और कुछ दिनों के लिए आइए।
So you are very, very fortunate to have been taken shelter of Srila Radhana Swami.
आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप श्री राधानाथ महाराज के आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं।
Because such devotees to find a place of shelter at Krishna's feet, he is offering shelter, but it's difficult to take complete shelter at Krishna's feet.
Krishna ki charanon mein aashirvaad ke liye lena bahut mushkil hai.
But his devotees are very kind.
Unke bhakt bahut dayalu
hain. And they offer their shelter.
Aur wo apna aashirvaad dete hain.
This is their unlimited kindness.
Ye unki asimit kripa hai.
And if you can find such a devotee, you please take shelter there.
अगर आपको ऐसा भक्त मिलते हैं तो कृपया उसका आश्रय ग्रहण करिए।
So Srila Radhanath Swami is such a devotee, you can take shelter of without hesitation, without fear, you can wholly embrace his lotus feet and feel that your whole life is completely safe.
Srila Radhanath Swami ऐसे भक्त हैं कि बिना हिचकिचाहट के, बिना डर के आप उनके चरण कमलों को स्पर्श का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं और यही सच्चा सुरक्षित स्थान है।
This is my conviction.
ये मेरा विश्वास है।
So when one takes shelter of the lotus feet of Krishna's devotees, then his problem is life is solved.
अगर कोई कृष्ण के भक्त के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तो उसकी समस्याओं का हल हो जाता है।
The problem of life is we're taking birth and death again and again and again.
जीवन की समस्या ये है कि हम बार 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 जन्म ले रहे हैं।
This is the real problem of life.
ये जीवन की वास्तविक समस्या है।
But when you take shelter of one of Krishna's devotees, that problem is finished.
लेकिन आप जब उनके किसी भक्त का आश्रय ग्रहण करते हैं तो समस्या अंत हो जाती है।
You don't have to worry anymore.
आपको और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
That you'll ever have to take birth again.
आपको फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं।
This is why the devotees are happy. We've been hearing about the distressful conditions, apparently distressful conditions that the devotees have been facing. But they're always happy in these conditions. Why? Because they've solved the real problem of life. The birth and death business is finished for them.
उनके लिए जन्म और मृत्यु का जो है अंत हो चुका है।
After billions and billions and billions of not only births, but going through billions and billions of universes.
लाखों करोड़ों ब्रह्मांड में जो है
in one lifetime, simply by meeting a devotee and taking shelter of his feet, his business is finished.
एक जीवन में भक्ति के चरणों का आश्रय ग्रहण करने से हमारा कार्य कम्प्लीट हो जाता है।
So then the devotee's business is, I've received this wonderful gift.
भक्ति का एक स्वभाव है कि वो इस आश्रय को ग्रहण करे।
This is the gift that Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give.
और यही श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने के लिए आए।
And he's giving through his devotees.
और अपने भक्तों के द्वारा दे रहे हैं।
So now we receive this wonderful gift.
हमें एक सुंदर अवसर प्राप्त है।
We are convinced that this is our last birth in the material world.
हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन भौतिक जीवन में आखिरी जन्म है।
Because we take shelter of the lotus feet of Krishna's devotees, we are going back to Godhead at the end of this life.
भक्ति के चरणों का आश्रय ग्रहण करने से हम इस जीवन के बाद वापस भगवान के धाम जा रहे हैं।
So our only business, our only our gratitude to our spiritual masters who have saved us from this repetition of birth and death is simply to give what we've been given to others.
और हमारी कृतज्ञता का दिखाने का तरीका है गुरु के प्रति हमें जन्म मृत्यु से बचा रहे हैं कि हम दूसरों को प्रदान करें जो वो हमें दे रहे हैं।
So that's why the devotees are always happy because the problem is finished and now their business is simply presenting Krishna consciousness to others. Whether there is distressful condition, whether there is a happy condition, it doesn't matter for them.
भक्त जो है जो कृष्ण भाव में दूसरों को देते हैं, चाहे सुखी अवस्था हो दुखी अवस्था हो, उन्हें कोई अंतर ही नहीं पड़ता।
Because they receive the great gift of shelter at the lotus feet of Krishna through his devotee. Now, our problem in life has been solved. Now, our only business, let's help others with their problem. So I'd like to thank Srinivas Maharaj for inviting me.
And
I'd like to thank you also very much for being such wonderful devotees here. In Belgaum. And this, because I'm simply an official priest, I can pray to Adamanava and Gauranga Mahaprabhu and Jagannath for your blessings, but when you receive the blessings of their devotee, then actually they are to give my blessings is superficial. Nevertheless, as an official priest, I will pray to Adamanava and Chaitanya Mahaprabhu and Lord Jagannath to increase your devotion, increase your faith, and increase your shelter in the lotus feet of the very, very dear devotees, Sri Radhanath Swami.
Sri
Radhanath Swami Maharaj ki
Nitaya
Gaura Premanandi. That was my pleasure to speak this. Thank you. After all the humiliation we suffered.
Jananivas Prabhu said we should take the content of his humility seriously, but not the literal words that he spoke. Jananivas Prabhu ki, Chandramadi Maharaj ki,
Swami Maharaj ki.
Once again I want to thank all of you. One of the most glorious festivals we have ever seen. Belgaum is really a very, very specially blessed place. One of the foremost commanders of Srila Prabhupada's movement, Devamrit Prabhu, has come here. Simply out of love and affection for all of you, he has come. So please reciprocate with his kindness. It is Srila Prabhupada's mercy manifested through him. And make your lives perfect. Thank you very much. Srila Prabhupada.
Yeah. Yeah.